नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने प्रशासनिक सेवा में लेटरल एंट्री संबंधी विज्ञापन रद्द किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने इस वर्ष जून में 19,29,000 नए सदस्य शामिल किए। भारत ने जापान से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए नियामक बाधाएं दूर करने का आह्वान किया। कट्टरपंथ के ऑनलाइन खतरों पर चर्चा के लिए 2 दिवसीय भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू होगा। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 9वें महिला टी20 विश्व कप को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित किया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। पोलैंड की राजधानी वॉर्सा में श्री मोदी का रस्मी तौर पर स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ बातचीत करेंगे और वहां के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा से भेंट करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा होगी। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। श्री मोदी उन स्मारकों का भी दौरा करेंगे जो जामनगर और कोल्हापुर के साथ पोलैंड के विशेष संबंधों की याद दिलाते हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री दूसरे चरण में इस महीने की 23 तारीख को यूक्रेन की यात्रा पर रहेंगे। 1992 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन की पहली यात्रा होगी। क्यू में प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में राजनीतिक, व्यापार, आर्थिक, निवेश, शिक्षा, सांस्कृतिक, लोगों के बीच आदान प्रदान और मानवीय सहायता सहित द्विपक्षीय संबंधों के कई पहलू शामिल होंगे। प्रधानमंत्री यात्रा के दौरान छात्रों सहित भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री की यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने और आगे ले जाने में सहायक होगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से निर्देश मिलने के बाद प्रशासनिक सेवा में लेटरल एंट्री संबंधी विज्ञापन रद्द कर दिया है। इससे पहले कल सरकार ने आयोग से प्रशासनिक सेवा में लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन रद्द करने को कहा था। कुछ दिन पहले यूपीएससी ने केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिव, निदेशक और उपसचिवों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसका विपक्षी दलों ने विरोध किया था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्षता प्रीति सूदन को पत्र लिखकर कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि लेटरल एंट्री की प्रक्रिया संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों, विशेष रूप से आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए आरक्षण सरकारी नौकरियों में सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की वचनबद्धता का आधार है। इसका लक्ष्य ऐतिहासिक न्याय सुनिश्चित करना और समावेशिता को बढ़ावा देना है। डॉ सिंह ने कहा कि ये महत्वपूर्ण है, सामाजिक न्याय के प्रति संविधान के आदेश का पालन किया जाए कि सरकारी सेवाओं में वंचित समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने कहा कि लेटरल एंट्री से भरे जाने वाले पद विशेषज्ञता और एकल संवर्ग वाले समझे जाते हैं, इसीलिए उनमें आरक्षण का प्रावधान नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया है। इस मुद्दे पर सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि लेटरल एंट्री के निर्णय को आरक्षण के सिद्धांतों से जोड़ने के पीछे प्रधानमंत्री की सामाजिक न्याय के प्रति वचनबद्धता व्यक्त होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं और उनके कार्यक्रमों से समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण को बढ़ावा मिला है।
यूपीएससी में लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। ये जो हमेशा समाज के अंतिम तबके तक पहुंचने की, न्याय दिलाने की जो मोदी जी की प्रतिबद्धता है, वो आज के यूपीएससी में लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल लगाने के निर्णय में भी क्लियरली दिखाई देती। मोदी जी ने यूपीएससी के जरिए से लेटरल एंट्री लेना एक ट्रांसपेरेंसी लाने का माध्यम, और अब उसमें रिजर्वेशन का प्रिंसिपल लाने से सोशल जस्टिस का और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता भी स्पष्ट हो।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने इस साल जून में 19,29,000 सदस्य जोड़े हैं, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 7% से अधिक हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि सदस्यता में हुई इस वृद्धि को बढ़ते रोजगार के अवसर सहित कई कारकों के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष जून के दौरान लगभग 10,25,000 नए सदस्यों ने नामांकन किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने जापान से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी साझा करने में आने वाली नियामक बाधाएं दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में संपन्न हुई 2+2 वार्ता में भारत और जापान ने सुरक्षा सहयोग का नया ढांचा तैयार करने पर सहमति व्यक्त की ताकि समग्र कार्यनीतिक संबंधों को और मजबूत बनाया जा सके। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल थे। जापान की ओर से वहां के विदेश मंत्री योको कामिकावा और रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू ने वार्ता में हिस्सा लिया। डॉ जयशंकर ने अपने बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने प्रौद्योगिकी अनुसंधान और औद्योगिक सहयोग के लिए नए आयाम उजागर करने पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने घोषणा की कि भारत जापान के फुकुओका शहर में नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और जापान सीमा पार से आतंकी गतिविधियों सहित आतंकवाद का विरोध करने के प्रति संकल्पबद्ध हैं। जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा ने कहा कि भारत और जापान ने अपना यह संकल्प दोहराया है कि वे बलपूर्वक यथास्थिति को बदलने के एकतरफा प्रयासों का विरोध करेंगे और कानून पर आधारित मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेंगे। दो दिवसीय भारत यूरोपीय संघ ट्रैक सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू होगा। भारत और यूरोपीय संघ ऑनलाइन कट्टरपंथ से उभरते खतरों पर चर्चा करने के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इस सम्मेलन में आतंकवाद के ऑनलाइन खतरों से मिलकर निपटने के रास्ते तलाशे जाएंगे। ये सम्मेलन डिजिटल आतंक के विरूद्व लड़ाई में अग्रणी दक्षिण एशिया और यूरोप के प्रवर्तन अधिकारियों, शिक्षाविद, नीति निर्माता और विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करेगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य यूरोपीय संघ की हिंद प्रशांत रणनीति के साथ क्षेत्र में आतंकवाद निरोधक संवाद और साझेदारी को बढ़ाना है। यह कार्यक्रम भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच जारी आतंकवाद निरोधक सम्मेलनों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। इसमें ड्रोन आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, गलत सूचना और भ्रामक सूचना जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली में 19वें सीआईआई इंडिया अफ्रीका व्यापार सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन का विषय है साझा भविष्य। इसमें व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य देखभाल और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सम्मेलन में 65 देशों के 1100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 47 अफ्रीकी देश हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी नेता राम माधव और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 18 और 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में मतदान होगा। मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। पहले चरण में पुलवामा, अनंतनाग, शोपिया, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। वहीं उम्मीदवार 27 अगस्त तक नामांकन पत्र भर सकते हैं। 28 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापस लिए जा सकते हैं 30 अगस्त को। जम्मू कश्मीर में युवा और महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि के कारण नए मतदाताओं की संख्या में 93,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। केंद्र शासित प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़कर 209 हो गई है। अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ पूरे हुए वर्ष 2024 के विशेष संशोधन के अनुसार मतदाताओं की कुल संख्या 88,03,000 है, जिनमें 44,79,000 पुरूष, 43,13,000 महिलाएं और 178 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुए इस विशेष संशोधन में कुल 93,284 मतदाता जोड़े गए हैं। गुजरात और उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। गुजरात विधानसभा के सत्र के दौरान सदन की 4 बैठकें होंगी। इस सत्र में जीएसटी संशोधन विधेयक, गुजरात मादक पदार्थ नियंत्रण संशोधन विधेयक और गुजरात विशेष अदालत विधेयक सहित 5 विधेयक पेश किए जाएंगे। इस बीच विपक्षी कांग्रेस ने सत्र की अवधि बढ़ाने की भी मांग की है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान सरकार पूरक बजट के साथ कई महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत कर सकती है। चमोली जिला प्रशासन ने सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिला अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस को 2 दशक पुराने सड़क नाकाबंदी विरोध प्रदर्शन मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार करके 28 अगस्त को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। अदालत ने संजय सिंह की दोष सिद्धि के बाद आत्मसमर्पण करने में असफल रहने और मामले की सुनवाई को टालने पर कड़ी आपत्ति जताई है। पंजाब में वन और वन्यजीव संरक्षण विभाग पूरे राज्य में हरियाली अभियान के अंतर्गत पौधारोपण कर रहा है। इस अभियान के तहत पठानकोट जिले के शाहपुर कंडी के 30 हेक्टेयर वन क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से कई किस्मों के बीजों का छिड़काव किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
हरियाली मिशन के तहत राज्य में विभिन्न किस्म के 3 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य है। पठानकोट जिले के वनों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन के माध्यम से तुलसी, आंवला, जामुन, हरर, भेड़ा, सुजान और विभिन्न प्रकार के बीजों को रेत के छोटे छोटे गोले बनाकर ड्रोन के माध्यम से वन्य क्षेत्र में छिड़का गया। धार ब्लॉक में करीब 24,000 हेक्टेयर वन्य क्षेत्र है और घने वन के कारण मजदूरों व अन्य साधनों की सहायता से पौधे नहीं लगाए जा सकते हैं। ऐसे में ड्रोन के माध्यम से अब करीब 5 लाख बीज क्षेत्र के वन में छिड़के जाएंगे। शिशु शर्मा शांतल, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने महिला 2020 विश्व कप के 9वें संस्करण को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात स्थानांतरित कर दिया है, परंतु बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस आयोजन का आधिकारिक मेजबान बना रहेगा। टूर्नामेंट 3 से 20 अक्टूबर के बीच दुबई और शारजाह में आयोजित होगा। आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जियोफ एलर्डिस ने इस फैसले की पुष्टि की। उन्होंने मूल योजना के अनुसार टूर्नामेंट बांग्लादेश में आयोजित न किए जाने पर भी निराशा व्यक्त की। टूर्नामेंट को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित करने का ये निर्णय बांग्लादेश में चुनौतीपूर्ण स्थिति और एक सफल और सुरक्षित आयोजन सुनिश्चित करने के लिए आईसीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं कुश्ती में भारत के रौनक दहिया ने जॉर्डन के अम्मान में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन 110 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। रौनक ने कांस्य पदक मुकाबले में तुर्की के एमरुल्लाह कैपकन को 6-1 से पराजित किया। इससे पहले रौनक हंगरी के जोल्टन कजाको से सेमीफाइनल मुकाबला 0-2 से हार गए थे।
मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए देश के पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इस महीने की 25 तारीख तक पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज वर्षा का अनुमान है। वहीं मौसम विभाग ने केरल के 6 जिलों पथनमथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
धन्यवाद फरहत। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में उच्चतम न्यायालय का सुझाव आज सभी अखबारों की पहली खबर है। राजस्थान पत्रिका लिखता है डॉक्टरों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, टास्क फोर्स गठित, 3 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कर सकते एक और घटना का इंतजार, बड़ा बदलाव जरूरी। अजमेर दुष्कर्म कांड में 6 दोषियों को उम्रकैद, जनसत्ता ने यह खबर अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। राजधानी में कल हुई बारिश के चलते जलभराव की तस्वीरें आज सभी अखबारों ने प्रकाशित की हैं। हिन्दुस्तान लिखता है बारिश में फिर बेहाल दिखे दिल्ली वाले। दैनिक जागरण की सुर्खी है सड़कें बनी तालाब, पानी भरने से अंडरपास बंद। पहली बार अंतरिक्ष में टुकड़ों में जाएगा चंद्रयान 4। इसरो प्रमुख सोमनाथ बोले चंद्रयान 4 और 5 का डिजाइन तैयार, सरकार से मंजूरी का इंतजार। अमर उजाला की खबर है अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी स्टेच्यू ऑफ यूनियन, ह्यूस्टन में 90 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा। राजस्थान पत्रिका की खबर है और फोन से लगातार मिल रही जानकारी से डिजिटल डिमेंशिया का जोखिम, याददाश्त, एकाग्रता और सीखने की क्षमता घट रही है। दैनिक भास्कर की खबर है।
धन्यवाद देवेंद्र। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने प्रशासनिक सेवा में लेटरल एंट्री संबंधी विज्ञापन रद्द किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने इस वर्ष जून में 19,29,000 नए सदस्य शामिल किए। भारत ने जापान से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए नियामक बाधाएं दूर करने का आह्वान किया। कट्टरपंथ के ऑनलाइन खतरों पर चर्चा के लिए 2 दिवसीय भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू होगा। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 9वें महिला टी20 विश्व कप को बांग्लादेश से संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।